एक बड़ा सवाल है। इंसान क्या अपनी नियति, अपने प्रारब्ध या अपनी डेस्टिनी को बदल सकता है? अनंत तो यही चाहता है और इसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है। मगर महज चाहने से क्या होता है? शायद होता तो वो है जो नियति में लिखा होता है। देवता ने तो यही कहा था। वो कहानियां शो धूम्रपान, मद्यपान या किसी और प्रकार के व्यसन का समर्थन नहीं करता है और ना ही किसी प्रकार के अंधविश्वास या रूढ़िवादी विचार को बढ़ावा देता है। ये शो केवल कहानियों की एक श्रृंखला है। इसमें वर्णित सभी पात्र, स्थान और घटनाएं काल्पनिक हैं। श्रोताओं को अपने विवेक से फैसला लेने की सलाह दी जाती है। आप सुन रहे हैं पॉडकास्ट वो कहानियां। प्रस्तुत है सीजन 2 की दूसरी कहानी कालशंकु, दूसरा अध्याय, भाग 15। लेखन और आवाज दीपक मेड़तवाल, कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट मोहित अग्रवाल। अनंत और उसके साथियों को बदमाशों की कैद में 5 दिन हो चुके थे। भले ही वो बंधक बने हुए हों, लेकिन अनंत इसके बाद भी खुश था। और खुश होने के पीछे कारण था एक ख्याल। ये ख्याल कि बस एक दिन बाद वो काल शंकु के चक्र से आजाद होने वाला है। मगर इसके बाद भी एक दूसरी बात रह रहकर उसके बदन में सिहरन पैदा कर देती थी। वो बात जो उस देवता ने उसे कही थी कि प्रारब्ध को बदला नहीं जा सकता है। इस बीच 14 फरवरी 2019 की शाम को उन्हें पता लगा कि पुलिस कभी भी इस ठिकाने पर धावा बोल सकती है। इस वजह से बदमाशों ने फटाफट चारों बंधकों को वहां से निकाल दूसरी जगह ले जाने की तैयारी शुरू कर दी। वो उनकी आंखों पर पट्टी बांधकर उन्हें वहां से ले जाने वाले थे, लेकिन उन चारों में कोई था जो इस सबसे बाहर निकलने के लिए छटपटा रहा था, और वो था ज्ञान। ज्ञान ने अपने ऊपर बंदूक ताने बदमाश पर थावा बोल दिया। सुशांत ने भी मौका देख दूसरे बदमाश को काबू में कर लिया। ऐसा लग रहा था कि दोनों बदमाश एकदम नौसिखिए थे, या ये भी हो सकता है कि पिछले 5 दिनों में बंधकों का व्यवहार देखकर उन्हें उनसे किसी तरह के विरोध की आशंका नहीं थी, और यही बेवकूफी उन पर भारी पड़ गई। शोर शराबा सुनकर बाकी बदमाश वहां आ पहुंचे, मगर अब सुशांत के पास बंदूक थी और ज्ञान ने भी लोहे का एक सरिया संभाल लिया था। सुशांत गरजा, आगे बढ़ने से पहले सोच लेना, जितनी गोलियां तुमने जिंदगी में नहीं चलाई होंगी उतनी मैं रोज खर्च कर देता हूं। लेकिन लग रहा था कि उन लोगों को उसकी बात समझ नहीं आई थी, इसलिए सुशांत ने टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे उस बदमाश पर गोली दाग दी जिसने उन पर रिवॉल्वर तान रखी थी। गोली उसके बिल्कुल पास से होकर गुजरी थी। अगले ही पल नतीजा सामने था। उन लोगों ने उनको रोकने की कोशिश नहीं की। अनंत और उसके साथी वहां से पैदल ही भाग छूटे। उनके वहां से निकलने के कुछ ही मिनट बाद उस ठिकाने से 2 जीपों में बदमाश भी निकल चुके थे। बदमाशों ने उनका पीछा नहीं किया। राज ने कहा, ये हमारे पीछे क्यों नहीं आए? जवाब जानने के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। थोड़ी ही देर में पुलिस सायरन की आवाज सुनाई देने लगी। राज पुदपुदाया, तो पुलिस के डर से भागे हैं ये। मगर अनंत के दिमाग में भी कुछ चल रहा था। उसने कहा, पर यार एक बात समझ नहीं आई, उन लोगों ने हमें ज्यादा आसानी से नहीं छोड़ दिया, मतलब हमें रोकने पकड़ने की ज्यादा कोशिश नहीं की। ज्ञान ने जवाब दिया, सुशांत सर ने जिस तरह से गोली चलाई थी उसके बाद वो कर भी क्या सकते थे। सुशांत ने कहा, नहीं अनंत ठीक कह रहा है, मुझे भी नहीं लगा था कि ये लोग इतना जल्दी हार मान लेंगे। खैर हम लोग आजाद हो चुके हैं। तब तक पुलिस की 2 गाड़ियां वहां आती दिखाई देने लगी। थोड़ा पीछे ही धूल उड़ाती एक सफेद रंग की क्रेटा गाड़ी भी आती दिखाई दी। अनंत को कुछ खटका, ये गाड़ी तो जानी पहचानी लगती है। राज ने कहा, दिल्ली नंबर की गाड़ी है। तो अनंत ने कयास लगाते हुए कहा, ये तो। सुशांत ने उसकी बात पूरी की, ये तो नलिनी की गाड़ी है, पर वो यहां। सुशांत हैरत से अनंत की तरफ देख रहा था और अनंत वो तो खुद हैरान था। सुशांत ने कहा, इट्स अनबिलीवेबल। पुलिस की एक गाड़ी उनके पास आकर रुक गई जबकि दूसरी गाड़ी उस फैक्ट्री नुमा गोदाम की तरफ बढ़ चली। तभी अनंत को महसूस हो गया कि आगे क्या होने वाला है। जो पुलिस ऑफिसर उतर कर आया उसे अनंत अच्छी तरह से जानता था। ये वही पुलिस ऑफिसर था जो कुंवर अनूप सिंह के लिए काम करता था। उसने आते ही उनसे जानकारी लेनी शुरू की। थोड़ी देर में चारों पुलिस के सामने अपने बयान दर्ज करवा चुके थे। अनंत के कदम उस तरफ बढ़ चले जिधर नलिनी कुछ लोगों के साथ बात कर रही थी। बात करने पर पता लगा कि अनंत ने 9 तारीख को दिल्ली के लिए निकलते वक्त नलिनी को फोन करके अपने आने के लिए बता दिया था, मगर उसके दिल्ली ना पहुंचने पर नलिनी ने उसकी खोज खबर करनी शुरू की और चैनल के कॉन्टेक्ट को काम में लेकर इन लोगों की खोजबीन शुरू करवाई। पुलिस ने उनकी गाड़ियां इस जगह से काफी दूर बरामद की, फिर मुखबिर और दूसरे सोर्सेस को इस्तेमाल करके आखिर अनंत और उसके साथियों को ढूंढ निकाला गया। पूरी बात सुनने के बाद सुशांत ने कहा, नलिनी थैंक्स, वरना मैंने तो सोच लिया था अगर इन लोगों ने हमें नहीं छोड़ा तो मैं इनके गैंग में शामिल हो जाऊंगा। इस बात पर एक हंसी का ठहाका गूंज पड़ा, लेकिन जब उन्होंने देखा कि पुलिस ऑफिसर सुशांत की इस बात पर उसे घूर घूर कर देख रहा है तो वो लोग चुप हो गए। अनंत नलिनी को एक तरफ लेकर गया। थैंक्स नलिनी, नलिनी ने मुस्कुराकर कहा। इट्स ओके अनंत, अनंत ने नलिनी की आंखों में देखा और मुस्कुरा दिया। एक सेकंड के लिए उनकी आंखें टकराई और फिर पता नहीं क्या हुआ कि दोनों ने निगाहें चुरा ली। थोड़ी देर बाद नलिनी ने पूछा, अनंत पर यह सब हुआ कैसे? अनंत ने बड़ी गहराई के साथ कहा, तुम्हें तो सब पता है। जवाब में नलिनी ने कहा, नहीं मुझे कुछ नहीं पता। अनंत ने गहराई में डूबते हुए कहा, नलिनी तुम्हें सब पता है। अनंत ने जिस अंदाज में कहा उस पर नलिनी थोड़ा अचकचा गई। तभी अनंत को ध्यान आया कि नलिनी को पिछली बार की कोई बात याद नहीं है। इस पर अनंत ने थोड़ा अटकते हुए कहा, मैं तुम्हें सब बताता हूं। रात घिर आई थी, 14 फरवरी की तारीख बीतने वाली थी, मगर 15 फरवरी का पूरा दिन और रात अभी बाकी थी। इस वक्त नलिनी, अनंत और सभी साथी गवर्नमेंट गेस्ट हाउस में रुके हुए थे। नलिनी फोन पर किसी से बात कर रही थी, जबकि अनंत बेचैनी की हालत में इधर उधर घूम रहा था। न जाने क्यों उसे ठीक नहीं लग रहा था। जितनी आसानी से वो लोग बदमाशों के चंगुल से छूट गए थे, इस बात ने उसे परेशान कर दिया था। उसका सोचना सही भी था, क्योंकि वो नहीं भूल सकता था कि इस कहानी के दो किरदारों कुंवर अनूप सिंह और भभूति बल्ली से उसकी मुलाकात अभी तक नहीं हुई है। जब अनूप सिंह से मिले पुलिस ऑफिसर को उसने देखा तो उसके दिमाग में फिर से कई तरह की आशंकाएं घर कर गई थी। नलिनी ने जैसे ही फोन पर बात पूरी की, अनंत ने उसके पास जाकर कहा, नलिनी हम लोग कब निकल रहे हैं यहां से? नलिनी ने जवाब दिया, शायद कल दोपहर तक। एक्चुअली पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बीच यहां से जाना पॉसिबल नहीं है, एंड आई थिंक तुम लोगों को थोड़ा रेस्ट भी चाहिए। अनंत ने झुंझलाकर कहा, नहीं यार हम यहां नहीं रुक सकते हैं, हमें जल्द से जल्द यहां से बाहर निकलना है। अनंत को इस तरह रिएक्ट करते देख नलिनी हैरत में थी। उसने अनंत को हिम्मत बंधाते हुए कहा, अनंत एवरीथिंग इज ओके, आई कैन अंडरस्टैंड इस वक्त तुम क्या फील कर रहे हो, बट हम लोग अभी नहीं जा सकते यहां से, फॉर्मेलिटीज में वक्त लगता है। तब तक सुशांत भी वहां आ गया था। उसने कहा, नलिनी सही कह रही है, हमें अपने व्हीकल्स को भी चेक करना है, पता नहीं सालों ने कौन कौन से पार्ट्स निकाल लिए होंगे, वरना हम रास्ते में फंस जाएंगे। अनंत समझ गया कि अभी वो यहां से बाहर नहीं जा सकता है, इसलिए हताशा में उसने हवा में मुक्का मारा और वहां से एक तरफ टेबल पर जाकर बैठ गया। फ्रस्ट्रेशन की हालत में उसने सिगरेट सुलगा ली। नलिनी को अनंत का यह व्यवहार समझ नहीं आ रहा था। उसने सुशांत की तरफ सवालिया निगाहों से देखा। सुशांत ने एक ठंडी सांस छोड़ी और बोलना शुरू किया, एक्चुअली इट्स टू मच कॉम्प्लिकेटेड, अनंत किसी चीज से बहुत ज्यादा डर रहा है। नलिनी ने कहा, इट्स नेचुरल सुशांत, ऐसे एक्सीडेंट्स के बाद ट्रॉमा से उबरने में लोगों को टाइम लगता है, और जितना मैं अनंत को जानती हूं वो ऊपर से कुछ भी दिखे बट अंदर से वो बहुत सेंसिटिव पर्सन है। सुशांत ने नलिनी की तरफ देखा, वो उसे समझाना चाहता था कि वो पूरी बात समझ नहीं पाई है। नलिनी बात कुछ और है, अनंत इस एक्सीडेंट से पहले से ही काफी वियर्ड बिहेव कर रहा था। वियर्ड? नलिनी कुछ समझ नहीं पाई। सुशांत ने कहा, यस वियर्ड, इनफैक्ट जिस रोज हम लोग यहां से निकले थे उस दिन भी अनंत काफी हड़बड़ी में था। ये 9 तारीख की बात है, रात को अनंत कहीं बाहर था और जब सुबह लौट कर आया तो बहुत परेशान था, बल्कि अब मुझे समझ आया कि वो परेशान नहीं था, वो डरा हुआ था। नलिनी पूरी बात को समझने की कोशिश कर रही थी। सुशांत ने आगे बताया, पता नहीं क्यों उसने मुझसे पूछा कि मैं जिंदा हूं। अब नलिनी भी चौंक पड़ी, व्हाट? सुशांत ने कहा, हां हम में से किसी को उसका यह बिहेवियर समझ नहीं आया। इसके बाद उसने कहा कि हम इसी वक्त दिल्ली के लिए निकल रहे हैं, जबकि हम लोग काम खत्म करने के बाद वहां एक दिन और रुकने वाले थे। उसके पास से लगातार ऐसा लग रहा है कि वो हर चीज से डर रहा है। वो इस इलाके से निकल भागना चाहता है। मैंने उससे बार बार पूछा कि वो किस चीज से भागना चाहता है, तो पता है उसने क्या कहा? सुशांत नलिनी की तरफ देखने लगा, जो उसकी पूरी बात सुनकर खुद उलझन में पड़ चुकी थी। उसने धीरे से कहा, क्या कहा? सुशांत ने जवाब दिया। उसने कहा कि वो एक श्राप से भाग रहा है, और उस श्राप से बचने का बस यही तरीका है कि हम सभी लोग इस जगह से दूर चले जाएं। हम वहां से निकल ही रहे थे कि बीच में हम लोगों को किडनैप कर लिया गया। नलिनी एकदम चुप थी। उसके चेहरे पर अनंत को लेकर चिंता छा चुकी थी। उसने सहानुभूति से अनंत की तरफ देखा, जो इस वक्त दूर आसमान में कड़कती बिजली को देख रहा था। उसने सुशांत से पूछा, वो किस श्राप की बात कर रहा था? नलिनी की बात सुनकर सुशांत फीकी सी हंसी हंस दिया। ऐसा लग रहा था कहीं ना कहीं वो भी अनंत की बात पर विश्वास कर रहा था। सुशांत ने कहा, उसने कहा मैं मरने वाला हूं, 15 फरवरी यानी कल तक मेरी मौत हो जाएगी। सुशांत ने जिस तरह से बात कही थी उससे नलिनी भी अंदर तक हिल गई। उसने सुशांत के चेहरे की तरफ देखा और धीमे से पूछा, आर यू बिलीविंग दिस? सुशांत जोर से ठहाका लगाकर हंस पड़ा। सच कहूं, जब उन गुंडों ने मुझ पर अटैक किया था तब मैंने सोच लिया था कि भाई मैं तो गया, लेकिन मैं जिंदा हूं और मैं जिंदा रहूंगा। सुशांत ने माहौल को हल्का बनाने की कोशिश की थी, लेकिन नलिनी को समझ आ गया था कि यहां कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है। तभी सुशांत ने कहा, नलिनी आई थिंक यू शुड टॉक टू अनंत, मुझे लगता है वो तुम्हारी बात सुनेगा। नलिनी ने जवाब दिया और अनंत के पास चली गई। अनंत टेबल पर सिर झुकाए बैठा था। नलिनी को समझ नहीं आया कि वो बात कहां से शुरू करे, इसलिए वो वहीं पास में बैठ गई। करीब 2 मिनट बाद अनंत फिर से सिगरेट जलाने उठा। नलिनी को सामने देखकर वो चौंक उठा, अरे तुम कब आई? बस अभी। पता नहीं क्यों मगर अनंत को हंसी आ गई। जवाब में नलिनी भी हंसने लगी, मैं सही था। सही थे? पर किस बारे में? इस बारे में कि अगर चैनल में वीडियो फुटेज टाइम से नहीं पहुंची तो तुम हमें नहीं छोड़ोगी, और देखो तुम यहां तक आ गई। नलिनी जोर से हंस पड़ी। अनंत उसका चेहरा देख रहा था। तभी नलिनी ने उसकी तरफ देखा और जैसे अनंत की चोरी पकड़ी गई, वो दूसरी तरफ देखने लगा। नलिनी ने कुछ नहीं कहा। अनंत ने एक सिगरेट और जला ली। नलिनी को समझ नहीं आ रहा था कि वो अनंत से बात कैसे शुरू करे। आखिरकार शुरुआत अनंत ने ही की। कुछ कहना है तुम्हें? नलिनी ने कहा, नहीं बस ऐसे ही। आर यू ओके? अनंत ने जवाब दिया, तुम्हारे सामने ही तो बैठा हूं। नलिनी ने हिचकिचाते हुए कहा, एक्चुअली तुम पहले वाले अनंत नहीं लग रहे हो, कुछ ना कुछ हुआ है। अनंत धीरे से बुदबुदाया, हुआ तो बहुत कुछ है पर तुम्हें कुछ याद नहीं। नलिनी ने अनंत से पूछा, कुछ कहा तुमने? जवाब में अनंत बस गर्दन हिलाकर रह गया। नलिनी ने आगे कहा, सुशांत भी कुछ बता रहा था किसी श्राप के बारे में, क्या है ये सब? अनंत उसके चेहरे की तरफ गौर से देखने लगा, जैसे वो उसकी आंखों में उतर जाना चाहता हो। नलिनी को यह सब बड़ा अटपटा लग रहा था, इसलिए वो थोड़ा पीछे हुई। अनंत ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हें कुछ भी पता नहीं? अनंत के पूछने का अंदाज कुछ ऐसा था कि नलिनी से जवाब देते नहीं बना। उसने कहा, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? अनंत ने नलिनी के हाथ पर हाथ रख दिया। किसी और वक्त बात कुछ और होती, मगर अब नलिनी को अनंत से डर लगने लगा था। उसने अपना हाथ पीछे खींचा। अचानक अनंत को समझ आ गया कि फिलहाल उसकी यह हरकत बेहूदगी लग सकती है, इसलिए उसने नलिनी का हाथ छोड़ दिया। I'm sorry. आप सुन रहे थे कालशंकु दूसरा अध्याय, पॉडकास्ट वो कहानियां पर। यह था भाग 15। लेखन और आवाज दीपक मेड़तवाल, इन एसोसिएशन विद पिक्सल सिटी प्रोडक्शंस।